In our understanding of the law, there are two great errors.
व्यवस्था की हमारी समझ में दो बड़ी गलतियां होती हैं. व्यवस्था के बारे में हमारी समझ में दो बड़ी गलतियां होती हैं.
Is the error of legalism?
वो है कानूनवाद, व्यवस्थावाद की गलती.
You must do something in order to be saved.
तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता है बचने के लिए.
And the other is the error of antinomianism.
और फिर है कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी व्यवस्था रखने की जरूरत नहीं है.
Said because you're saved, you don't need to do anything.
क्योंकि तुम बच गए हो, इसलिए तुम्हें कुछ करने की अब जरूरत नहीं है.
Last hour we talked about some characteristics of legalism.
पिछले घंटे हम लोगों ने बात किया था जो व्यवस्थावाद है उसके कुछ चरित्रों के बारे में.
Now I want to talk about some characteristics of antinomianism.
और अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ गैर व्यवस्थावाद के कुछ चरित्रों के बारे में.
Now there is a theological antinomianism and a practical antinomianism.
तो दो तरह के गैर व्यवस्थावाद हैं, एक तो है व्यवहारिक और दूसरा है आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित.
Theologically, some men believe that the believer does not have to obey the law.
Theologically, या धर्म विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार कुछ लोग ये सोचते हैं कि उन्हें व्यवस्था का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है.
But they still believe the Christian should be holy and obedient.
लेकिन वो फिर भी विश्वास करते हैं, मानते हैं कि विश्वासी को पवित्र होने की आवश्यकता है.
But the law of God has no influence in the believer's life.
लेकिन एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी प्रभाव नहीं है.
He is controlled by the Spirit, not by the law.
क्योंकि वो आत्मा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, व्यवस्था के द्वारा नहीं.
There is a practical antinomianism.
और फिर एक है व्यवहारिक गैर व्यवस्थावाद.
They don't believe the law has any influence on the Christian life and we are free to do whatever we want.
वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि व्यवस्था का मसीह के जीवन में कोई भी प्रभाव है और अब हम लोग मुक्त हैं कुछ भी करने के लिए.
And if you're going to be a preacher and preach accurately, you must understand these things.
और अगर आप विश्वास प्रचारक हैं और आप प्रचारक का काम करना चाहते हैं तो आपको इन बातों को समझना है सही तरीके से.
So I want to talk about some characteristics of antinomianism.
गैर व्यवस्थावाद के चरित्रों के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता
हूं. All through the history of the church, they've had these two main problems.
और मसीही इतिहास में ये दो विशेष बड़ी समस्याएं नहीं हमेशा.
Paul's enemies were the Judaizers, the legalists.
और जो पॉलस के जो दुश्मन लोग थे या जो विरोधी लोग थे वो लोग यहूदीवाद वाले थे, कानूनवाद के लोग थे, व्यवस्थावाद के लोग थे.
Also another group he had to contend with.
और एक और समूह था जिससे पॉलस को सामना करना पड़ा था.
They said that we're free from the law, we're forgiven of sin, we can do what we want.
उन्होंने कहा कि हम तो व्यवस्था से स्वतंत्र हो गए हैं, अब हम माफ कर दिए गए, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं.
And remember what Jude said.
आपको याद है यहूदा क्या कहता है?
Jude chapter 1.
यहूदा में, यहूदा की पत्री में.
And verse 3.
और उसका तीसरा पद.
He said, I wanted to write to you about our great salvation.
वो यहाँ पे कहता है कि मैं तुमको एक बड़े उद्धार के बारे में बताना चाहता हूँ.
But there are false teachers and I believe I have to confront them.
और फिर वो कहता है कि ऐसे झूठे विश्वासी हैं और मुझे उनका सामना करना है.
And what were these false teachers?
और कौन है ये जो झूठे शिक्षक लोग जिनसे उनका सामना करना है?
Verse 4.
और चौथे पद में देखिए.
They turned the grace of God into licentiousness.
उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल दिया है.
We're saved by grace.
हम लोग विश्वास से बचे हैं अनुग्रह से.
We're strengthened by grace.
हम लोग अनुग्रह से दृढ़ किए गए हैं.
And we are forgiven by grace.
और हम लोग अनुग्रह से माफ किए गए हैं.
So we can live any way we want.
तो अब हम लोग जैसा चाहे वैसे जी सकते हैं.
We are free from sin.
क्योंकि हम लोग पाप से स्वतंत्र कर दिए गए हैं.
So we can live however we want to.
तो अब हम लोग चाहे जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं.
And no matter what we do, we are forgiven.
और हम चाहे जो भी करें अब हम क्षमा पा चुके हैं.
No matter what we do, God loves us.
क्योंकि चाहे हम जो भी करें परमेश्वर से प्रेम करता है.
Our sin has no influence on our relationship with God.
हमारे पाप का परमेश्वर से हमारे संबंध पे कोई प्रभाव नहीं है.
This is the spirit of antinomianism.
ये है गैर व्यवस्थावाद की आत्मा.
Let me list some of these characteristics for you.
और इन इन चरित्रों में से कुछ को मैं आपके सामने डाल देता हूँ.
Number one.
Pehla pad.
The antinomian believes in eternal justification.
जो एक गैर व्यवस्थावाद व्यक्ति होता है वो अनंत धर्मी ठहरा दिए जाने पर विश्वास करता है.
What does that mean?
इसका मतलब क्या हुआ?
They believe that from all eternity we were already justified.
वो लोग ये विश्वास करते हैं कि अनंत काल पहले से ही हम पहले से ही धर्मी ठहरा दिए गए थे.
They confuse God's plan for justification with God's accomplishment of justification.
वे परमेश्वर की योजना धर्मी ठहरा दिए जाने को भ्रमित करते हैं परमेश्वर के कार्य को धर्मी ठहरा दिए जाने के संपूर्ण करने से. दो अलग अलग कार्य हैं.
They teach that the believer, even before he was born, was already justified.
वो लोग ये सिखाते हैं कि एक विश्वासी इससे पहले कि वो पैदा हो उसको तो धर्मी ठहरा दिया जा चुका है.
Now is that true?
क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है?
When are we justified?
हम धर्मी कब ठहरा दिए जाते हैं? Before the creation of this earth, world.
The antinomian confuses God's election with God's justification.
अच्छा ये थोड़े थोड़े जटिल बात है तो इनमें ध्यान से सुनिएगा. जो गैर व्यवस्थावाद लोग हैं वो लोग परमेश्वर के चुनाव को परमेश्वर के हमें धर्मी ठहरा दिए जाने में भ्रमित करते हैं. एक तो है चुनाव परमेश्वर का, एक तो है परमेश्वर हमको धर्मी ठहरा दे रहा है. उन दोनों बातों में वो लोग गड़बड़ी करते हैं.
When we talk about redemption, we need to talk about it in three ways.
जब हम छुटकारे की बात करते हैं तो हमें छुटकारे की बात को तीन तरह से बात करना चाहिए.
Our redemption was planned in eternity past.
तो हमारा छुटकारा अनंत काल पूर्व में पहले योजना बना दी गई थी. हमारे छुटकारे की योजना, छुटकारे की योजना अनंत काल पूर्व में बना दी गई थी.
Our redemption was accomplished by Christ on the cross.
लेकिन हमारे छुटकारा पूरा किया गया या प्राप्त कर लिया गया यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर.
But our redemption is applied when we believe.
लेकिन हमारा छुटकारा हम पर लागू किया जाता है या हमें मिलता है जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं. तो तीन बातें होंगी, ठीक है?
Our justification was planned from all eternity.
तो हमारा धर्मी ठहरा दिया जाना अनंत काल पूर्व में ही योजना बना दी गई थी उसके बारे में परमेश्वर ने कि हमको धर्मी ठहराया जाएगा. अनंत काल पूर्व में उसकी योजना बन गई थी.
Our justification was accomplished by Christ on the cross, or the basis of our justification was accomplished by Christ.
लेकिन हमारे धर्मी ठहरा दिए जाने का आधार या धर्मी ठहरा दिया जाना यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर हमारे लिए प्राप्त कर लिया गया था.
But when are we actually justified?
लेकिन वास्तविक तौर पे हम कब धर्मी ठहरा दिए जाते हैं?
Before we believe or after we believe?
विश्वास करने से पहले हम धर्मी ठहरा दिए जाते हैं कि विश्वास करने के बाद धर्मी ठहरा दिए जाते हैं?
Romans chapter 5.
रोमियों का पांचवा अध्याय.
And verse 1.
और उसका पहला पद. रोमियों का पांचवा अध्याय पहला पद.
What is the condition of justification, the means of justification?
और यहाँ पे धर्मी ठहराए जाने की शर्त क्या है या साधन क्या है, किसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जा रहे हैं? यहाँ पे देखिए पांचवें अध्याय इसके पहले पद में.
Faith.
विश्वास.
Which comes first?
क्या पहले आता है?
Justification then faith, or faith then justification?
पहले धर्मी ठहराया जाना आता है, उसके बाद विश्वास आता है कि विश्वास आता है और उसके बाद धर्मी ठहराया जाना आता है?
Our justification was planned in eternity past.
हमारा धर्मी ठहराया जाना पूर्व अनंत काल पूर्व में योजना बना दी गई थी उसकी.
Our justification was accomplished as to its basis on the cross.
लेकिन हमारा धर्मी ठहराए दिए जाने की उपलब्धि तब कर ली गई थी क्रूस पर, और क्रूस ही उसका साधन था, उसका आधार था.
But our justification is applied when we believe.
लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तभी हम धर्मी ठहरा दिए जाते हैं, वो हम पे लागू किया जाता है.
We cannot confuse the plan of justification with the application of justification.
हम धर्मी ठहरा दिए जाने की योजना को धर्मी ठहरा दिए जाने के लागूकरण से हम उसको भ्रमित नहीं कर सकते.
So when the antinomian preaches, he preaches this.
तो जो एक व्यक्ति जो गैर व्यवस्थावाद है, जो गैर नियमवाद है, वो ये कहता है.
You're already justified.
वो कहता है तुम तो धर्मी ठहरा दिए गए हो.
You just don't realize it.
तुम जानते नहीं हो अभी तक.
You just don't know it.
तुमको मालूम नहीं अभी.
You just haven't believed it.
तुमने अभी तक विश्वास नहीं किया.
You're already justified.
क्योंकि तुम तो पहले ही धर्मी ठहरा दिए गए हो.
Is that true?
क्या ये बात सत्य है?
When is a man justified?
एक व्यक्ति कब धर्मी ठहराया जाता है?
When he believes.
जब वो विश्वास करता है.
Number two.
दूसरी बात.
Antinomian has a defective or incomplete definition of faith.
और जो गैर व्यवस्थावाद होता है, उसके पास विश्वास की परिभाषा अधूरी होती है या टूटी फूटी होती है.
He says faith is just intellectual understanding.
वो कहता है कि विश्वास तो सिर्फ मानसिक समझ है.
You just understand the facts.
वो ये कहता है कि तुम केवल सत्य को जो तथ्य है उनको समझ लो, जो तथ्य को समझ लो.
And you just accept the facts.
और फिर उन तथ्य को केवल ग्रहण कर लो.
You've already been justified.
क्योंकि तुम पहले ही तुम
You've already been forgiven.
क्योंकि तुम्हें पहले ही क्षमा हो गई है.
You just need to understand it.
क्योंकि तुम्हें सिर्फ इसको समझना है.
You just need to accept it.
तुम्हें उसको केवल ग्रहण करना है.
They have an incomplete view of faith.
क्योंकि विश्वास की उनके पास एक अधूरी समझ है.
They say faith is not commitment.
वो कहते हैं विश्वास समर्पण नहीं है.
Faith is not entrustment.
विश्वास जो अपने आप को सौंप देना नहीं मसीह के हाथ में.
Faith is an understanding of the facts.
लेकिन विश्वास तो एक सत्य को केवल तथ्य को समझना ही है.
You believe Jesus died for you?
और वो तुम सोचते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर गया?
You understand that?
तुम समझते हो इस बात को?
You're saved.
ठीक है, तुम बच गए.
An incomplete understanding of faith.
विश्वास की एक अधूरी समझ.
But what did James say?
लेकिन याकूब ने क्या कहा?
Even the demons believe and tremble.
उसने कहा या दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और कांपती हैं.
When Jesus cast out the demons, what did they say?
जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला तो दुष्ट आत्माओं ने क्या कहा यीशु मसीह से?
We know who you are.
हम जानते हैं कि तुम कौन हो.
You're the son of God.
क्योंकि तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो.
You have power.
तुम्हारे पास सामर्थ है.
We know where you come from.
हमें मालूम तुम कहां से आते हो.
We know what you're going to do.
हमें मालूम तुम क्या करने जा रहे हो.
The demons understood.
दुष्ट आत्माएं समझती थी.
They accepted the historical facts.
वो उस ऐतिहासिक सत्य तथ्य को समझते थे.
The antinomian says this.
और ये जो गैर व्यवस्थावाद है,
You're already forgiven.
वो ये कहता है कि तुम तो पहले
You're already justified.
पहले धर्मी ठहरा दिए हो.
All you need to do is understand it.
केवल तुम्हें इतना करने की जरूरत है कि तुम समझ जाओ ये क्या है.
Faith is just intellectual understanding.
विश्वास ये केवल मानसिक समझ है.
Number three.
तीसरी बात.
They say the believer should never doubt his salvation.
विश्वासियों को अपने उद्धार पे कभी भी भरोसा शक नहीं करना चाहिए.
He should never examine himself.
उसे अपने आप को कभी जांचना नहीं चाहिए.
He should never test himself.
उसे अपने आप को कभी परीक्षा परखना नहीं चाहिए.
Immediate assurance.
तुरंत झट से निश्चयता दे देते हैं. झट से निश्चयता.
No matter how you live.
चाहे तुम जिस तरह से अपना जीवन जियो.
No matter what you do.
चाहे तुम कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता.
God has saved you.
परमेश्वर तुमको बचा लिया.
Don't ever doubt it.
इस बात पे कभी शक मत करो.
If you doubt your salvation.
क्योंकि अगर तुमने उद्धार पे शक करोगे.
If you examine yourself.
तुम अगर अपने आप को जांचोगे.
If you test yourself.
तुम अपने आप को परखोगे.
If you try to make your calling and election sure.
अगर तुम अपनी बुलाहट और अपने चुनाव को दृढ़ करने की कोशिश करोगे.
That's not true faith.
और ये सच्चा विश्वास नहीं है.
Don't ever doubt it.
कभी भी उस पे शक मत करो.
No matter how you live.
चाहे जैसे भी तुमने जीवन बिताया.
You can sleep with prostitutes.
तुम वेश्याओं के साथ जाके सो सकते हो.
You can steal.
तुम चोरी कर सकते हो.
You can lie.
तुम झूठ बोल सकते हो.
You can cheat.
तुम धोखा दे सकते हो.
But if you've understood that you're justified.
लेकिन अगर तुमने ये समझ लिया कि तुम धर्मी ठहरा दिए गए हो.
Don't ever doubt it.
तो उस पे शक मत करना अपने उद्धार पे कभी.
An incomplete, what we call a presumptuous assurance, overconfident assurance.
और ये अधूरी और बहुत ही ज्यादा भरोसा निश्चयता पर, अपने आप मान करके चलना कि ऐसा हो जाएगा, उस तरह की निश्चयता.
Number four.
चौथी बात.
Antinomian says there's no need to confess sin.
और जो एक गैर व्यवस्थावाद या गैर नैतिकवाद व्यक्ति है तो वो कहता है कि पापों की क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पापों को अंगीकार करने की कोई जरूरत नहीं है।
You're already forgiven.
तुम्हें पापों की क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि
तुम्हारे पाप sins are wiped away.
तुम्हारे पाप तो शुद्ध हो चुके हैं।
You don't confess your sin.
तुम अपने पापों को क्षमा मांगने की अंगीकार मत करो।
He's removed them as far as the east is from the west.
और जितनी दूर पूरब से पश्चिम है उतनी दूर तक उसने हटा दिए पापों को।
God doesn't remember your sin.
परमेश्वर तुम्हारे पापों को याद नहीं रखता।
You don't need to confess your sin.
तुम्हें अपने पापों को मानने की जरूरत नहीं है।
Why do you confess your sin?
तुम क्यों अपने पापों को मानते हो?
God forgets them.
परमेश्वर उनको भूल जाता है।
Now listen carefully.
ध्यान से इस बात को।
I asked you before.
मैंने आपसे पहले पूछा इस बात को।
Should the Christian confess his sin?
क्या एक विश्वासी को अपने पापों से अंगीकार करना चाहिए?
Why?
क्यों?
Why?
क्यों?
Give me at least three reasons why a Christian should confess his sin.
एक विश्वासी को अपने पाप क्यों अंगीकार करना चाहिए? मुझे कम से कम तीन कारण दीजिए आप। कम से कम तीन कारण है कोई भी।
You're already forgiven.
अरे आप तो पहले क्षमा प्राप्त कर चुके कि नहीं प्राप्त कर चुके बताइए।
God doesn't remember your sin.
परमेश्वर तो आपके पापों को क्षमा याद नहीं करता है।
Why you want to confess your sin?
तो फिर क्यों आप अपने पापों को क्षमा मांगना चाहते हैं? ताकि हमारा उद्धार बना रहे। धन्यवाद ब्रदर। सो दैट आवर फेथ सो दैट आवर सल्वेशन में रिमेन।
So if you don't confess your sin, you will lose your salvation.
तो अगर आप पापों से क्षमा नहीं अंगीकार नहीं करेंगे तो आप अपना उद्धार खो देंगे। यही तो कह रहे हैं आप। तो आप अपना उद्धार खो सकते हैं। He hasn't got it. He's saying exactly the opposite. Sorry. तो क्यों तो क्या माने क्यों मांगे फिर अरे तो वो तो सही है लेकिन हम क्षमा हो चुका है तो क्यों क्या मांगने जाते हैं अरे तो लेकिन क्षमा तो हो चुके हैं तो फिर क्या जरूरत है So they're saying we need to confess because we've sinned, that's why we need to confess. So that we may continue in the fellowship with God. नहीं तो नहीं रहा होगी नहीं मतलब दया नहीं होगी हम अपना उधार खो जाएंगे तो फिर क्यों चाहिए दया की जगह फॉर द सेक ऑफ अ कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ द फेलोशिप फॉर द सेक ऑफ द कॉन्शियंस विवेक के लिए परमेश्वर से संगति में बने रहने के लिए पवित्रता में बने रहने के लिए कोई और फॉर सैंक्टिफिकेशन इट्स ओबीडियंस आगे कारिकता है शुद्धिकरण के लिए और कोई और संदीप हाथ उठा रहा वे बैक ही बोले नहीं तो हम खो देंगे अपना उधार नहीं तो हम खो देंगे अदरवाइज वी लूज अ सैल्वेशन ठीक है आपको एक और दोस्त मिल गया भैया हाँ जी नहीं 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 उत्तर दीजिए अभी आएंगे उस पर आप नया प्रश्न में पूछेगा So he is telling us something. Yeah, okay. तो हम अपने उद्धार को बनाए रखने के लिए करते हैं अगर आप नहीं करेंगे पश्चाताप नहीं करेंगे तो क्या आपका उद्धार खो जाएगा जो आप कह रहे हैं हम सहमत हैं आपसे लेकिन आप क्यों कह रहे हैं उस वो मैं जानना चाहता हूं और आप नहीं करते ना दोबारा उस चीज को So he said repentance so that we don't do it again. He's just giving an illustration that we've taken a bath, we've taken a shower, but when we get out, our feet get dirty, so we need to wash our feet. That's why we need. But I asked, why do we need to do that? I think he's also not clear. I think a lot of them still think that we can lose the salvation. Yeah.
Now listen carefully.
The
legalist says this.
जो व्यवस्थावाद, कानूनवाद, नियमवाद व्यक्ति है वो ये कहता है.
If you don't confess your sins, you will lose your salvation.
तो ये गलत शिक्षा है और ये कहती है कि अगर तुम अपने पापों को अंगीकार नहीं करोगे विश्वास करने के बाद, पहली बार नहीं हो रही, विश्वास करने के बाद, इट्स आफ्टर बिकमिंग बिलीवर, राइट? विश्वास करने के बाद अगर तुम अपने पापों को विश्वास अंगीकार नहीं करोगे तो तुम अपने उद्धार खो दोगे. ये गलत शिक्षा है.
The antinomian says this.
और जो दूसरे चरम स्थिति में जो है,
after you become a Christian, you don't need to confess any sin.
तो जो गैर व्यवस्थावाद वाला व्यक्ति है वो कहता है विश्वासी बन जाने के बाद तुम्हें अपने पापों को अंगीकार करने की जरूरत नहीं है. दो अलग अलग स्थितियां, ठीक है?
That no matter what you do, God loves you.
क्योंकि चाहे जो भी करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर तुमसे फिर भी प्रेम करता है.
Now listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
Both of those extremes are wrong.
ये दोनों चरम बातें कि करना है उधार पाने के लिए, नहीं करना है क्योंकि उधार हो गया, ये दोनों गलत है.
Look in 1 John.
पहले यूहन्ना में देखिए.
Very familiar verse.
आप लोग जानते हैं इस बात को, आप लोग में कुछ लोग कह भी रहे हैं इसके बारे में.
He is talking to Christians.
ये मसीहों से बात कर रहा है ये.
Chapter 1 verse 5.
पहला अध्याय इसका पांचवा पद.
God is light, in him is no darkness.
परमेश्वर ज्योति है, उसमें अंधकार नहीं.
If we say we have fellowship with him and walk in darkness, we lie. Don't practice the truth.
और यदि हम कहें कि हमारी सहभागिता उसके साथ फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर आचरण नहीं करते.
If we walk in the light, we have fellowship with one another. His blood cleanses us from sin.
परंतु यदि हम ज्योति में चलें तो हमारे उसके साथ सहभागिता है और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है.
Verse 8, if we say we have no sin, we're deceiving ourselves. Truth not in us.
और आठवें पद में अगर हम कहें कि हमें पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और सत्य हमें है नहीं.
Verse 9.
नवापद.
If we confess our sin,
यदि हम अपने पापों को मान लें, अंगीकार कर लें,
he's talking to believers.
ये विश्वासियों से कह रहा है.
God is faithful and righteous to forgive us of our sins.
परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में और अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासियों का धर्मी है.
And cleanse us from all unrighteousness.
हमारे सब अधार्मिकता से हमें शुद्ध करने में विश्वासी हो गया.
Now listen carefully.
अब ध्यान से इस बात को.
When a person believes, he is forgiven for the guilt of his sin.
जब एक विश्वासी विश्वास करता है तो पापों के दोष के लिए उसको माफ कर दिया जाता
है. His legal guilt is removed.
और उसके ऊपर जो कानूनी दोष है अब वो हमेशा के लिए हट जाता है उसके ऊपर.
But he still has remaining indwelling sin.
लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर एक बचा हुआ वर्तमान उसमें स्थापित पाप है.
He has been pardoned from the guilt of sin.
उस एक विश्वासी को पाप के दोष से तो क्षमा कर दिया गया है.
He has been freed from the power of sin.
और उसको पाप के सामर्थ्य से स्वतंत्र कर दिया गया है.
But he still has the presence of sin.
और उसके अंदर अभी भी पाप की उपस्थिति है.
And when we sin, our union with God is not broken, but our communion, our fellowship with God is broken.
और जब वो पाप करता है तो पाप के परमेश्वर से उसकी जो एकता है वो नहीं टूटती है, लेकिन परमेश्वर संगति है वो टूटती है. तो जब पाप करता है तो परमेश्वर से एकता नहीं टूटती है लेकिन संगति टूटती है.
When we sin, we don't lose our salvation, we may lose the assurance of our salvation.
तो जब हम पाप करते हैं तो अपना उद्धार नहीं खोते हैं लेकिन हम अपने उद्धार के की निश्चयता और आनंद को खो देते हैं.
When we sin, the Holy Spirit does not depart from us, but we may lose the comfort of the Holy Spirit.
तो ऐसा जब हम पाप करते हैं तो हमारे अंदर से पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चला नहीं जाता है. ध्यान से नहीं इस बात को. जब हम पाप करते हैं तो हमारे अंदर से पवित्र आत्मा हमको छोड़ के चला नहीं जाता है लेकिन उसका जो संतावना है, जो उसका आनंद है वो हमारे से हट जाता है.
So when we sin, several things may happen.
तो जब हम पाप करते हैं तो कई चीजें हमारे जीवन में हो सकती है. विश्वास करने के बाद की बात हो रही है.
We may grieve the Spirit.
हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं, शोकित करते हैं.
We may lose the joy of our salvation.
हम अपने उद्धार के आनंद को खो सकते हैं.
We may lose the power of God.
हम परमेश्वर की सामर्थ को खो सकते हैं.
Our fellowship with God may be broken.
परमेश्वर से हमारी संगति में कुछ विघटन आ सकता है, कुछ समय के लिए टूट सकती है.
And God may not hear our prayer.
और परमेश्वर हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना करे.
Our legal position does not change.
लेकिन जो हमारी कानूनी स्थिति परमेश्वर के सामने है वो नहीं बदलती.
But
है.
Our spiritual experience may change.
लेकिन हमारा आत्मिक अनुभव बदल सकता है.
So why must we confess our sin?
तो इसलिए विश्वास में आने के बाद हमें क्यों अपने पापों को अंगीकार करने की आवश्यकता है?
We might maintain fellowship with God.
तो ताकि हम परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखें.
नोटिस व्हाट वर्स 5 सेज.
ध्यान दीजिए यहाँ पे पांचवा पद क्या कहता है.
नो वर्स 3.
तीसरा पद क्या कहता है यहाँ पे देखिए, पहला पत्रस पहला अध्याय तीसरा पद.
We proclaim these things to you that you might have fellowship with us.
ये सारी बातें हम तुम्हें इसलिए सुनाते हैं ताकि तुम हमारे साथ सहभागिता रखो.
And our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ.
वास्तव में हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है.
The antinomian says this.
जो गैर व्यवस्थावाद है, जो व्यवस्था की चिंता नहीं करता, वो ये कहता है.
You don't have to confess your sin.
तुम्हें अपने पापों को मानने की जरूरत नहीं है.
Your sin does not affect your relationship with God.
क्योंकि तुम्हारे पाप परमेश्वर से तुम्हारे संबंध पे कोई भी असर नहीं डालते हैं.
Is that true?
क्या ये सत्य है?
Yes and no.
हाँ और नहीं.
Your sin does not affect your legal position with God.
आपके पाप परमेश्वर के साथ जो आपका कानूनी संबंध है, स्थान है, उस पर कोई असर नहीं डालता है.
But it affects your practical relationship with God.
लेकिन आपका जो व्यवहारिक संबंध परमेश्वर के साथ है, आपके पाप उस पर असर डालते हैं.
Your sin does not change the love of God.
परमेश्वर का प्रेम, आपका पाप उसको परमेश्वर के प्रेम को नहीं बदल सकता है.
But your sin may affect your assurance of the love of God.
लेकिन आपका पाप परमेश्वर का जो प्रेम है, उसकी निश्चयता को आपके हृदय में बदल सकता है, प्रभाव डाल सकता है.
Your sin does not make the Holy Spirit depart from you.
आपके पाप की वजह से आपके अंदर से पवित्र आत्मा चला नहीं जाता
है. But your sin can grieve the Holy Spirit.
लेकिन आपका पाप पवित्र आत्मा को शोकित करता है, शोकित कर सकता है.
That his power,
उसकी सामर्थ,
his comfort,
उसका सहानुभूति,
his assurance,
उसका आश्वासन,
and his assistance,
और उसके जो आपको जो सहायता है,
may be hindered by your sin.
आपके पाप की वजह से इन चीजों पे रुकावट पड़ती है.
But the antinomian says this.
लेकिन जो व्यवस्था की चिंता नहीं करता है, जो गैर व्यवस्थावाद व्यक्ति है, वो ये कहता है.
No matter what you do,
चाहे जो भी तुम करो,
your relationship, your fellowship with God does not change.
तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारी संगति परमेश्वर के साथ कभी भी फर्क नहीं पड़ता, बदलता नहीं.
That is wrong teaching.
ये गलत शिक्षा है.
So why do we confess our sins?
तो इसलिए क्यों हम अपने पापों से क्षमा मांगते हैं?
Because the pollution of our sin grieves the Holy Spirit.
क्योंकि हमारे पापों की गंदगी पवित्र आत्मा को, हमारे जो भीतर है, उसको शोकित करता है.
And our if we don't confess our sin, it hinders our communion, our fellowship, our personal relationship with God.
क्योंकि अगर हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं, तो हमारे जो परमेश्वर से जो संगति है, जो हमारी उससे साथ जो एकता है, और जो हमारे उसके साथ समय है, उस पे असर पड़ता है.
So when we sin and don't confess our sin, we don't lose our salvation.
तो ध्यान से सुनिए इस बात को. जब हम पाप करते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं, तो हम अपने उद्धार को नहीं खोते हैं.
But we may lose the joy or assurance of our salvation.
लेकिन हम अपने उद्धार के आनंद को और उद्धार की निश्चयता या आश्वासन को खो सकते हैं.
Remember what David said.
याद है आपको दाऊद ने क्या
कहा? Psalm 51.
भजन 51 हमने देखा था.
Restore to me the joy of my salvation.
मेरे उद्धार के आनंद को मुझे पुनः स्थापित कर दे.
He doesn't say restore to me my salvation.
वो ये नहीं कह रहे कि मेरे उद्धार को मुझे वापस दे दे.
The legalist says this.
जो कानूनवाद व्यक्ति है वो ये कहता है.
You fall into sin.
जो व्यवस्थावाद कहता है तुमने पाप में गिर गए.
You lose your salvation.
तुमने अपना उद्धार खो दिया.
You must be converted again.
इसलिए तुम्हें पुनः नया जन्म पाने की आवश्यकता है.
Then you sin again.
फिर तुम पाप करोगे.
You lose your salvation.
फिर तुमने अपना उद्धार खो दिया.
You must believe again.
इसलिए तुम्हें फिर से विश्वास करना
है. Go up and down.
तुम ऊपर नीचे करते रहोगे.
In and out.
अंदर बाहर करते रहोगे.
Saved, unsaved.
एक बार बच गए, दूसरी बार नहीं बच गए.
That's salvation according to works.
ये वास्तव में क्या है? कार्यों के पर आधारित विश्वास उद्धार हुआ.
The antinomian says this.
लेकिन जो गैर व्यवस्थावाद व्यक्ति है, दूसरा चरम स्थिति में, वो ये कहता है.
No matter how you live, you still have a close relationship with God.
इससे कोई मतलब नहीं तुम कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, चाहे जो भी करो, तुम्हारा फिर भी परमेश्वर से बड़ा ही नजदीक संबंध रहता है हमेशा.
Sin does you no harm, they say.
वो लोग ये कहते हैं कि पाप से तुम्हें कोई नुकसान होता ही नहीं है.
Obedience does you no good.
और वो कहते हैं कि आज्ञाकारिता से तुम्हें कोई फायदा नहीं होता है.
That's what the antinomian said.
और यही गैर व्यवस्थावाद के लोग कहते हैं.
Sin does you no harm.
पाप से तुमको कोई नुकसान नहीं होता है.
Obedience does you no good.
और आज्ञाकारिता से तुम्हें कोई फायदा नहीं होता.
Is that true?
क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है?
Sin does do you harm.
पाप हमें नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता
है. It hinders your relationship with God.
क्योंकि परमेश्वर से जो हमारे संबंध है उसमें वो रुकावट डालता है.
It hinders your fellowship with God.
और परमेश्वर से जो हमारी संगति है उसमें रुकावट डालता है.
It doesn't break your union, your saving union with God.
और जो हमारे उद्धार का जो हमारे उससे एकता हो गई उस पे असर तो नहीं डालता
है. But it may break your spiritual communion with God.
लेकिन परमेश्वर से जो हमारा आत्मिक एकता है, संगति है, उसमें रुकावट डालता है.
Any question?
कोई प्रश्न है? Okay, so what about those people who whom Jesus said, "I don't even know you"? Did they not lose their salvation?
Now you must read that verse very carefully.
अब भाई आपको उस बात को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है.
Matthew chapter 7.
मत्ती उसका सातवां अध्याय.
Have you got a good translation here? I never.
Yeah. Knew. Yeah.
Matthew chapter 7.
मत्ती उसका सातवां अध्याय.
Verse 21.
उसका 21 पद को ध्यान से
देखिए. Many will say me that day, Lord, Lord.
बहुत से लोग कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु.
Verse 22.
22 पद.
Did we not preach in your name?
क्या हमने आपके नाम से प्रचार नहीं किया?
And in your name cast out demons?
दुष्टात्माओं को नहीं निकाला?
And in your name perform many miracles?
और आपके नाम से बहुत से ऐसे काम नहीं किए?
Verse 23.
23 पद.
Look very carefully.
ध्यान से देखिए क्या कहता है वहाँ पे.
What does Jesus say?
यीशु मसीह क्या कहते हैं वहाँ पे?
Well, I knew you once, but I don't know you now.
यीशु मसीह क्या वहाँ पे कहते हैं? भाई एक समय तो मैं तुमको जानता था, लेकिन अब नहीं जानता हूँ.
What does he say?
क्या कह रहे यीशु मसीह वहां पे? वो क्या कह रहा है आप ही बताइए. उनके कर्मे से क्या होता है? दुनिया बहुत कुछ करती है. यीशु मसीह क्या कह रहे
हैं? I don't know what the Hindi says.
No, it says the same thing.
It says I never knew you.
तो जो जो स्थल है वो यहाँ पे यीशु मसीह उन लोगों से कह रहे हैं, मैं तो तुमको जानता ही नहीं, कभी जाना ही नहीं मैंने तुमको, मेरा कोई तुमसे लेना देना ही नहीं था.
You were never converted.
तुम्हारा कभी हृदय परिवर्तन हुआ ही नहीं.
You were never born again.
तुम्हें कभी नया जन्म मिला ही नहीं.
You were not a true Christian.
तुम वास्तविक सच्चे मसीह थे ही नहीं.
You preached the gospel.
हाँ, तुमने हो सकता है सुसमाचार
प्रचार किया. You cast out demons.
और हाँ, हो सकता है तुमने दुष्टात्मा
निकाली. You performed miracles.
हाँ, तुमने आश्चर्यकर्म भी कर लिए.
But I never knew you.
लेकिन मैं तो तुमको कभी जानता ही नहीं.
Who's he talking to?
ये किससे बात कर रहा है?
He's talking to preachers.
ये प्रचारकों से बात कर रहा है.
American preacher.
अमेरिकी प्रचारकों से.
Indian preacher.
भारतीय प्रचारकों से.
Chinese preacher.
चीनी प्रचारकों से.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात.
You can preach the gospel and not be saved.
आप सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं और खुद बचे हुए नहीं भी हो सकते हैं.
You can perform miracles and not be saved.
आप आश्चर्यकर्म कर सकते हैं और आप खुद भी बचाए नहीं हो सकते.
You can cast out demons and not be saved.
और ऐसा भी संभव है कि आप दुष्ट आत्माएं भी निकाल सकते हैं और यीशु मसीह के द्वारा नहीं बचाए हुए.
Your ministry does not save you.
आपकी सेवकाएं आपको नहीं बचा सकती है.
I never knew you.
मैं तुमको कभी नहीं जानता था, ऐसा यीशु मसीह कह रहा है.
They didn't lose their salvation.
इन लोगों ने अपना उद्धार खोया नहीं है.
Jesus said they never had their salvation.
यीशु मसीह ये कह रहे कि इनके पास उद्धार कभी था ही नहीं. फर्क समझ रहे कि नहीं समझ?
Now what does that tell us as preachers?
अच्छा, अब हमारे और आप, हम और आप जो प्रचारक हैं, उनके लिए हमसे क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन?
Are you in the faith?
क्या आप विश्वास में हैं कि नहीं हैं?
Are you born again?
क्या आप नया जन्म पाए हुए हैं?
Have you truly trusted God, Christ?
क्या आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है कि नहीं?
The antinomian says this.
जो गैर व्यवस्थावाद वाला व्यक्ति वो ये कहता है.
No matter how you live,
चाहे तुम जैसे भी जियो,
it doesn't affect your relationship with God.
वो आपके जो संबंध परमेश्वर के साथ, उस पर कोई असर डालता ही नहीं है.
You can lie.
आप झूठ बोल सकते हैं.
You can cheat.
आप चोरी कर सकते हैं.
You can steal.
आप धोखा दे सकते हैं.
You can commit adultery.
और आप व्यभिचार कर सकते हैं.
You don't have to confess your sin.
आपको अपने पापों को मानना नहीं है.
And no matter what you do, God still is happy with you.
चाहे आप जो भी करिए, परमेश्वर फिर भी आपसे खुश रहता है.
Sin does you no harm.
पाप आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है.
Obedience does you no good.
आगे कार्यता आपको कोई फायदा नहीं देती.
That's wrong teaching.
ये गलत शिक्षा है.
Sin does you harm.
क्योंकि पाप आपको नुकसान पहुंचाता है.
In obedience does do you good.
और आगे कार्यता आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए अच्छी है.
your sin cannot make you lose your salvation.
यद्यपि अगर आप विश्वासी हैं तो आपके पाप आपका उद्धार खुआ नहीं सकती है.
Your obedience cannot gain your salvation.
और आपकी आज्ञाकारिता आपको उद्धार नहीं दिला सकती
है. But sin can hinder your fellowship with God.
लेकिन आपका पाप परमेश्वर से साथ संगति में रुकावट डालती है.
A lot of men stand in the pulpit.
बहुत सारे लोग पुलपिट पे खड़े रहते हैं.
And they preach for years.
और फिर सालों साल तक प्रचार करते हैं.
But there's no power.
लेकिन उनमें सामर्थ्य
नहीं है. No authority.
कोई अधिकार नहीं है.
No influence.
कोई प्रभाव नहीं है.
No fruit.
कोई फल नहीं है.
No usefulness.
कोई उपयोगिता नहीं है.
What is the problem?
समस्या क्या है?
In their heart.
उनके हृदयों में.
In their mind.
उनके मस्तिष्कों में.
In their will.
उनके इच्छाओं में.
There's unconfessed sin.
उनके अनंगीकार के वो पाप है.
And they have secret sin.
उनके गुप्त पाप है.
Now I'm not talking about the ordinary struggles we all have.
हम सामान्य जो संघर्ष हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं.
We all have temptation.
हम सबके सामने प्रलोभन होते हैं.
We all struggle against sin.
हम सब पाप के साथ संघर्ष करते हैं.
But I'm talking about secret sin.
लेकिन हम बात कर रहे हैं गुप्त पापों के बारे में.
Hidden sin.
छिपे हुए पाप.
Unconfessed sin.
ऐसे पाप जिनको अंगीकार नहीं किया है.
That no one knows.
जो कोई भी नहीं जानता.
No one sees.
किसी ने देखा नहीं है.
But God sees.
लेकिन परमेश्वर देखता
है. And God knows.
और परमेश्वर जानता है.
And he preaches and there's no power.
और जब वो प्रचार करते हैं उसके प्रचार में कोई सामर्थ्य नहीं
होती. There is no fruit.
कोई फल नहीं होता है.
Oh, he has knowledge.
और उसके पास ज्ञान
है. He's been to Bible school.
और वो बाइबल स्कूल जाता है.
He has gift.
उसके पास वरदान
है. He has good theology.
उसके पास अच्छी धर्म
शिक्षा है. But when he stands to preach.
लेकिन जब खड़ा होकर प्रचार करने के लिए.
He may bellow like a bull.
और वो एक सांड की तरह चिल्ला सकता है.
But there's no power.
लेकिन कोई सामर्थ्य नहीं उसमें.
No influence.
कोई प्रभाव नहीं.
What is the problem?
समस्या क्या है?
Down in his heart.
उसके हृदय के भीतर.
When no one else sees.
जब कोई नहीं देख रहा उसको.
There is lust.
वासना है.
There is pride.
और घमंड है.
There is love of money.
पैसे का प्रेम है.
There is secret sin.
और गुप्त पाप है.
They're like Judas.
और वो लोग यहूदा के समान है.
He preached the kingdom of God.
यहूदा ने परमेश्वर के राज के बारे में
बात किया. He was sent out to heal the sick.
और वो बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा गया.
He performed miracles.
उसने आश्चर्यकर्म भी किए.
He cast out demons.
उसने दुष्ट आत्माएं भी निकाली.
But he had his hand in the box.
लेकिन उसका हाथ जो था डब्बे के अंदर था.
Nobody knew.
किसी को मालूम नहीं था.
Nobody saw.
किसी ने देखा नहीं था.
But in his heart.
लेकिन उसके हृदय में.
Jesus said, "I never knew you."
और यीशु मसीह कहता है उससे कि मैं तो तुमको कभी भी नहीं जानता था.
But the antinomian says this.
लेकिन जो गैर व्यवस्थावाद व्यक्ति है वो ये कहता है.
You're a preacher.
तुम प्रचारक हो.
You've been to seminary.
तुम तो बाइबल स्कूल जा चुके हो.
You have gift.
तुम्हारे पास वरदान है.
When you preach, everyone loves to hear you.
जब तुम प्रचार करते हो सब लोग तुम्हें सुनना पसंद करते हैं.
You don't love your wife.
तुम अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हो.
No problem.
कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं.
You love money.
तुम पैसे से प्रेम करते हो.
No problem.
कोई दिक्कत नहीं.
You've got your eye on another woman in the church.
तुम्हारी कलीसिया में जो दूसरी औरत है उस पर तुम्हारी आंखें गड़ी हुई हैं.
No problem.
कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं.
You just keep preaching.
तुम केवल प्रचार करते रहो.
Because sin does you no harm.
क्योंकि पाप तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है.
You don't need to confess your sin.
तुम्हें अपने पापों को अंगीकार करने की जरूरत नहीं है.
That's antinomianism.
ये है गैर व्यवस्थावाद.
You're under grace.
तुम अनुग्रह के अधीन हो.
No matter what you do.
चाहे तुम जो भी करो.
When God looks at you.
जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है.
He has a big smile.
बहुत तेज मुस्कुराता है आपको देख करके.
Now let me ask you a question.
अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ.
What's in your life?
आपके जीवन में क्या है?
What are you hiding?
आप क्या छिपा के रखे हो अपने जीवन में?
I've told you before, I've had some good friends of mine that are preachers.
मैंने आपको पहले बताया था मेरे बहुत अच्छे कुछ अच्छे मित्र थे जो प्रचारक थे.
But now they're out of the ministry.
लेकिन अब वो लोग सेवा के बाहर हैं.
Why?
क्यों?
Secret sin.
गुप्त पाप.
Unconfessed sin.
ना पश्चाताप किए हुए पाप.
Listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
Man looks on the outside.
मनुष्य बाहर की ओर देखता है.
God looks at the heart.
परमेश्वर हृदय को देखता है.
You may hide your sin from man, but you cannot hide your sin from God.
आप अपने पाप को मनुष्यों से छिपा सकते हैं, लेकिन आपके पाप परमेश्वर से नहीं छिप सकते.
If you have serious, secret, unconfessed sin, you need to repent.
अगर आपके पास गंभीर ना पश्चाताप किए हुए गुप्त पाप है, तो आपको उन्हें पश्चाताप करना है उनसे.
You cannot think this way.
आप इस तरह से नहीं सोच सकते.
Well, I'm under grace.
अरे मैं अनुग्रह के अधीन हूँ.
I'm a preacher.
मैं एक प्रचारक हूँ.
If I confess my sins to everyone, people will be upset.
अगर मैं अपने अपने पाप से अंगीकार करूँगा, तो लोग परेशान होंगे, दुखी होंगे.
So you hide your sin.
तो फिर आप अपने पाप को छिपा लेंगे.
No one knows it.
किसी कोई नहीं जानता.
You don't confess it.
आप उसको अंगीकार नहीं
करते. And what happens to your conscience?
फिर क्या होता है आपके विवेक को?
It becomes harder and harder and harder.
वो और अधिक और भी कठोर होता जाता है, कठोर होता जाता है, कठोर होता जाता है.
And a little sin.
फिर एक छोटा सा पाप.
You don't confess it.
और आप उसको नहीं अंगीकार
करते. The spirit is grieved.
पवित्र आत्मा शोकित होती है.
His power departs.
उसके सामर्थ्य चली जाती
है. God is not pleased.
परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता.
And then you do another sin.
फिर आप एक और पाप करते हैं.
And another sin.
फिर एक और पाप करते हैं.
And your conscience becomes hard as a rock.
फिर आपका जो विवेक है, एक पत्थर के समान कठोर हो जाता है.
But the antinomian says this.
लेकिन जो गैर व्यवस्थावाद कानूनवाद
है,
वो ये कहता है.
That's no problem.
अरे ये तो कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है.
Don't worry about your conscience.
अपने विवेक के बारे में चिंता मत करो.
You're too precise about holiness.
तुम पवित्रता के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होते, ध्यान देते हो.
The old Puritan said this.
जो पुराने प्यूरिटन लोग थे, उन्होंने ये कहा.
We serve a precise God.
हम एक बहुत ही निश्चित परमेश्वर की सेवा करते हैं.
And he wants us to guard our heart.
और वो चाहता है कि अपने हृदय को संभाल करके रखें.
This is the era of antinomianism.
ये जो समय है, ये है परमेश्वर के नियमों के विरोध में काम करने वाला समय है.
They make no distinction between God's love and God's pleasure with us.
वे लोग परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे साथ और परमेश्वर का जो हमें प्रसन्नता है, उसमें कोई भिन्नता नहीं लाते, भेद नहीं लाते हैं.
They say this.
वो लोग ये कहते हैं.
God always loves us.
परमेश्वर हमसे हमेशा प्रेम करता है.
So that means he's always pleased with us.
तो इसका ये मतलब कि परमेश्वर हमसे हमेशा प्रसन्न खुश रहता है.
Now listen carefully.
इस बात को ध्यान से.
Is that true?
क्या ये बात सत्य है?
Does God always love us no matter what we do?
क्या परमेश्वर हमसे हमेशा प्रेम करता है, चाहे जो हम जो भी करें?
Yes or no?
हाँ या नहीं?
He always loves us.
वो हमेशा हमसे प्रेम करता है.
His love is unconditional.
क्योंकि उसका प्रेम बिना शर्त के है.
Second question.
दूसरा प्रश्न.
Is he always pleased with us?
क्या वो हमेशा हमसे प्रसन्न होता है?
Is he always pleased with us?
क्या वो हमसे हमेशा प्रसन्न रहता है?
I've often used the illustration of a parent. I've used it before.
मैं अक्सर एक माता-पिता का उदाहरण इस्तेमाल करता हूँ. मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है.
This illustration is limited but useful.
ये तो भी सीमित दृष्टांत है, लेकिन उपयोगी है.
We have unconditional love for our children.
हम लोग के अंदर अपने बच्चों के लिए बिना किसी शर्त के प्रेम है.
They are always our children.
वे लोग हमेशा हमारे बच्चे रहते हैं.
Do they always please us?
क्या वे लोग हमेशा हमेशा हमें प्रसन्न करते हैं?
Sometimes they disappoint us.
कभी कभी वो हमें निराश करते हैं.
We're not happy with them.
और हम लोग उनसे प्रसन्न नहीं होते.
But we still love them.
लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम उनसे प्रेम करते हैं.
Now God is greater than any earthly father.
लेकिन परमेश्वर जो है किसी भी पृथ्वी के पिता से बढ़ करके है.
And no matter what we do, he loves us.
चाहे हम जो कुछ भी करें, वो हमसे हमेशा प्रेम करता है.
But sometimes he is not pleased with us.
लेकिन कभी कभी वो हमसे प्रसन्न नहीं होता.
But the antinomian says he always loves us, he's always pleased with us.
लेकिन जो व्यवस्था के विरोध में लोग होते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर हमसे हमेशा प्रसन्न रहता है, परमेश्वर हमसे हमेशा प्रेम करता है.
No matter what you do, God's always happy with you.
चाहे जो कुछ भी आप करो, परमेश्वर हमसे हमेशा खुश रहता है.
You don't have to worry about pleasing God.
परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश आप मत करिए, चिंता मत करिए.
The That is not what the Bible teaches.
परमेश्वर का वचन हमको ये बात नहीं सिखाता है.
Let's look at a few verses.
आइए हम कुछ पदों को देख लें.
We're talking about wrong teaching, antinomian teaching.
हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गलत शिक्षा जो कि व्यवस्था के विरोध में है, गैर व्यवस्थावाद, गैर कानूनवाद, गैर नियमवाद वाली व्यवस्था.
Well, let's stop right here and take a break.
आइए हम लोग एक ब्रेक लें.
Are we going to stop at one? We got another class.
Yeah.
Let's take a break.
अच्छा ठीक है, आप लोग पास समय है 5 मिनट का, 10 मिनट का. बाहर जा सकते हैं, मुंह पे पानी डाल के आ सकते हैं, किचन में जाके मिर्चा लेके आ जाइए, हरी मिर्चा, और फिर वापस आ जाइए यहाँ पे. ठीक है,
एनी क्वेश्चन?
अच्छा, जाने से पहले कोई प्रश्न तो नहीं आपके पास? सतीश भाई को जल्दी है.
डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द क्रिश्चियन शुड कन्फेस हिज सिन?
आप समझ रहे ना इस बात को, क्यों एक विश्वासी को अपने पापों से अंगीकार करना चाहिए? ये बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे?
Or let me ask you one more question.
अच्छा, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछने जा रहा हूँ.
When's the last time you confessed your sin?
पिछली बार कौन सा समय था जब आपने अपने पापों से क्षमा मांगी?
Specific sin.
और खाली हवा में नहीं, विशेष विशेष पाप कि ये पाप.
Not like this.
इस तरह से नहीं क्षमा मांगी.
Oh Lord, I'm a sinner.
हे प्रभु, मैं पापी हूँ.
Please forgive me.
मुझे क्षमा कर दीजिए.
Amen.
Amen. इस तरह की पाप नहीं, इस तरह की प्रार्थना नहीं.
If your conscience is working properly,
अगर आपका विवेक सही तरीके से काम कर रहा है,
it will convict you of sin.
तो वो आपको आपके पापों के लिए चिताएगा.
I told you before.
मैंने आपको पहले भी बताया.
In every area of life,
जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में,
at work,
कार में,
at home,
घर पे,
in the church,
कलीसिया में,
in our thoughts,
अपने विचारों में,
in our words,
अपने शब्दों में,
in our acts,
अपने कार्यों में,
in our relationship with our children,
हमारे पर बच्चों के साथ,
in our relationship with our wife,
हमारे पत्नी के साथ संबंध में,
in our relationship to the church,
और कलीसिया में हमारे संबंधों में,
in every area,
हर एक क्षेत्रों में,
we ought to have a sensitive conscience.
हमारे पास एक संवेदनशील विवेक होना चाहिए.
Well, let's pray.
I am the prophet.